اگلی سورت یونس ہے، یہاں سے سورتوں کا وہ گروہ ہے جو مستقل تین سورتیں آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کے نام پہ، پھر بیچ میں ایک سورت رعد آنے کے بعد پھر چوتھی سورت حضرت ابراہیم کے نام پہ ہوگی. تو انبیاء کرام کے نام پہ سورتوں کا آنا ان کی عزت بھی ہے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل بھی کرنا ہے. چونکہ مکی سورت آ رہی ہے دو تین چار مدنی سورتوں کے بعد، تو آپ کو انداز بہت مختلف لگے گا. تھوڑا سا اس سورت کا اوور ویو لیجیے گا ایک برڈ آئی کے ساتھ. آیت 1 سے 70، 1 to 70، ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہے وہ فاؤنڈیشن، یہ ہے وہ روٹ جو مکہ کے 13 سالہ قرآن پاک کا حصہ تھی. اور یاد رکھے 2/3 آف قرآن صرف اس کے متعلق ہے. آج صبح کے دورے قرآن میں پارا نمبر 13 کے دوران ہم نے ایک مثال لی ہے، اگر آپ کا موقع آپ کو ملے تو بالکل اینڈ سے کوئی 15-20-25 منٹ پہلے کا حصہ سن لیجئے، کہ جس میں علم تارا کئی فضرب اللہ مثلاً کلی متن طیبہ میں ہم نے ایک درخت کو دیکھا ہے کہ ایمان گروہ کرتا ہے درخت میں، تو اس میں یہ ایمانیات ثلاثہ جڑوں میں تھے. جڑیں پختہ ہو گئیں تو باقی باتیں ختم ہو گئیں. تدریج کے ساتھ دین کو لیں گے تو اسلام A to Z پورا کا پورا سمجھ آئے گا. پھر 71 سے 98، رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، کیونکہ وہ کچھ چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا. وہ کچھ اختیار کرنے کو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. آیت 99 سے 103، ایمان اور اس کا حصول کیسے ہے، کیا اس کا طور طریقہ ہے. اور آیت 104 سے 109، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک اعلان ہے. بس بہت ہو گئی، جو چاہتے ہو وہ کرنا، وہ تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب دیکھتے ہیں ذرا شارٹ سرکل میں ایک کلوز اپ اوور ویو آف سورت یونس. آیت 1 سے تو 102، رسول کے انسان ہونے پر حیرت. لوگوں کو اس پہ بڑی حیرت ہوتی تھی، کیا کہ ایک رسول کی بات ہم مانے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ہر دور میں لوگوں کا رسول کا انسان ہونا چبھتا ہی رہا. وہ کہتے کہ انجوجل ہو، کو سپر ہیومن ہو، ہواؤں میں اڑے، بادلوں میں جائیں، ان کے آگے پیچھے تختوں کے تخت ہوں، اور سپر نیچرل ہوں، پانی پہ چلیں، ہواؤں میں اڑے. آج کئی لوگ بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں، رسول تو پھر رسول تھے. تو لہٰذا رسول انسان تھے، ہاں بڑے اعلیٰ قسم کے انسان تھے. پھر آئے 3 to 6، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا بیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام سے لے کر آگے تک کی اس کی صفات ہے. یدبر الامر ثم استوی علی العرش ما من شفیع الا من بعد اذنہ ہے، اور سب کچھ کہہ کے کہہ دیا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. مراد ہے کہ تم کدھر چل رہے ہو، افلا تذکرون، تم قبروں پہ جا کر اور تم درباروں پہ اور مزاروں پہ ڈھونڈتے ہو رب کو. نعوذ باللہ، رب تو وہ ہے جو اس کائنات کی ایک ایک چیز سے اپنے وجود کے اعتبار سے واضح بھی ہے، اور یہ کائنات بول بول کے بتاتی ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے جس کا ٹیسٹ بڑا خوبصورت ہے. پھر آیت 7 سے 10، برے اور بھلے لوگوں کا انجام دونوں برابر ہو نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو مرضی کرو، دیکھنا اینڈ پہ سب نے جنت کے باہر کھڑے ہونا اور گاڑی ہارن کرے گی اور دروازہ کھلے گا اور چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے، حالانکہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. اللہ کو یہ لفظ ہمیشہ میری نظریں روک لیتا. اس دنیا میں اطمینان پکڑ کر بیٹھ گئے، کتنے ریلیکسڈ ہو، مطمئن ہو، شکر ہے یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اچھا فلاں بچے کی شادی بس وہ بھی ہو گئی، اب اس کا گھر، اب ان کے بچے، کتنا ہماری تو ڈکشنریوں میں ہی یہ دنیا اتنی کھب گئی کہ ہم اپنی دنیا میں بڑے خوش، ردو بالحیات دنیا. لیکن والذین هم عن آیاتنا غافلون، آیتوں سے غفلت، ایک لفظ نہ پڑھنا ہے بچے کو، سورت فاتحہ کا ترجمہ نہ آئے بچے کو، اور وہ آپ چاہے اس کو رینگلر کی ڈگری دلا دیں، اس کو ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دلا دیں، آپ کتنے مطمئن ہیں، شکر ہے بچے کامیاب ہو گئے، بچے بہت اچھے ہیں، میرے بچے بہت نائس ہیں. لیکن آیتوں کا بھی تو ٹیسٹ لیجئے، نماز کا ترجمہ تو سنیے. یہ 6000 مائل اسٹون جو اللہ نے اپنی پہچان کے رستے کے قرآن پاک میں رکھے، یہ بھی تو دیکھیے کہ بچوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یاد رکھیے، صرف خواہشوں سے اور ارادوں سے جنت نہیں ملتی، برے لوگوں کا انجام برا اور اچھوں کا اچھا. اس کے برعکس آپ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم، سچا ایمان آتا ہے تو پھر اللہ خود گائیڈ کرتا ہے. بچوں کو قرآن پڑھا دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ خود ان کو ایمان کی طرف بھی راغب کرے گا اور اچھائیوں کی طرف بھی. پھر اسی طرح 11 سے 14 میں بشری کمزوریاں ہیں، خوشی آتی ہے تو ایک دم جھومنے لگتا ہے، غم آتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. गम खुशी में बदलता है, तो वो सारी ही तस्बीहां और मस्जिद नमाजें और मुसल्ले फिर लिपट लुपट जाते हैं, और कोई गम आता है तो फिर लंबी लंबी 500 दानों की तस्बीहां हैं। वैजा मसल इंसान है दुरु दान अली जम भी अवकायदन अवकायमन, उस वक्त तो इतना नेक बनता है, ऐसी दुपट्टे लपेट लपेट के बैठने वालियाँ, हाय अल्लाह रिश्ता दे दे रिश्ता दे दे रिश्ता हुआ, फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कल्लम यदुना इला दुर्रि मस्सहु, स्टेज पे अपने जिस्म को दिखाने और नुमाइश करने वाला बन जाता है वो इंसान, है ना इंसान न शुक्रा। फिर आयत 15-17, कुरान को बदलने का मुतालबा। वो कहते ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं, यही मुतालबा कल मक्का वालों का था, आज यही किसी हद तक मुसलमानों का भी दिखता है कि ए ती भी कुरान इन गैरी हाजा उबद्दिल हो, यानी हमें वो कुरान चाहिए जो वेस्ट को अच्छा लगे, हमें नया रिवाइज वर्जन चाहिए कुरान का जिसमें सूरह तौबा ना हो, इनफाल ना हो, बस झूम झूम के पढ़ने वाली 5 सूरतें हों या कुछ और चंद चीज़ें डाल दीजिए, वज़ाइफ की किताब कोई 5 सूरा दे दीजिए, दैट्स इट। वो हमें ये पूरा कुरान नहीं, होल सोल नहीं चाहिए, वी डोंट लाइक इट। तो अल्लाह ताला कहते हैं आप अपने घर बैठिए, बल्कि ऐसी बातें करने वालों के लिए तो मुझे ये खौफ है, इन्नी अखाफ इन सही तो रब्बी अजाब यौम नज़ीम, तुम्हारी इस बात पे ना कहीं अल्लाह ताला की पकड़ आ जाए। फिर इसके बाद देखिए 18-19, शिफात बातिला का मन घड़त अकीदा है, दूसरों के बारे में क्या कहते थे, यकूलूना हाउलाई शिफाउना इंदल्ला, ये है ना हमारे सिफारशी। तो जब बूटी तैयार की होगी स्टूडेंट ने तो तैयारी क्यों करे, पढ़े क्यों, उस पर गौर व फिक्र क्यों करे। आज भी जो लोग जानते तो है कि आखिरत आएगी लेकिन तैयारी नहीं कर रहे, उनके बारे में शक है कि कोई ना कोई अंदर छुपी हुई चीज़ है जिसको सामने ला कर क्यामत के दिन की निजात चाहते हैं। फिर आए 20, फरमाइशी मौजा दिखाने का मुतालबा। व यकूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतु मिन रब्बिही, यानी हर वक्त शोभ दे, हर वक्त बातें, हमारी मर्जियां मानो, हमारे काम चलेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसी चीजों के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा एक ब्रेक दे के ऐसी चीजों के बारे में इंसान को कहा जा रहा है कि ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी है, ये कोई रेडियो का प्रोग्राम थोड़ी है कि आप अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए, ये कुरान है, ये हक हिदायत है, तो लिहाजा हिदायत की तलब ना हो तो मौजज़े भी काम नहीं देते। आय 21-23, इंसान की एहसान फरामोशी। जी, खाता जिसका, पीता जिसका, लेता उसका, लेकिन फिर इज़ा लहु मकरुन फी आयातिना, अल्लाह ही के आयतों का इनकार कर देता है। और आय 24, दुनिया की जिंदगी खेती की तरह है, खेती की तरह है, याद रखिए कि ये खेती आखिरत में जाकर ही कटेगी ना, तो फायदा होगा, जिसकी खेती इधर ही कट गई, रिया और दिखावे की नजर हो गई, वहां जाने से पहले तो सब कुछ बासी हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, बल्कि जात हारी होना सिफुन, बिखर जाएंगी वो कोशिशें जो सिर्फ दुनिया के लिए की होंगी। और इसी तरह या यूहन्नास इन्नमा बख्शुकुम अला अन्फुसिकुम, तो अपने आप को बदलो, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, इतनी प्यारी आयत है, इस पर एक लेक्चर है, लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो, जिंदगी एक ढलता साया। आप कम से कम अगर पैगामे कुरान ही सुन रहे हैं ना तो दौरे कुरान का पेज लाइक कीजिए, अगर आप चाहें तो nurulquran.com पे जाके रमज़ान के पेज पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए तो आपको इंशाल्लाह एक्सेस मिल जाएगा, और आप फिर डेली जो चीज़ें शेयर हो रही हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसी तरह से आगे देखिए आयत 25-27, अल्लाह की राह ही सलामती की राह है, यानी द मोर सिक्योर पाथ इज अल्लाहस पाथ, वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, और वो उन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल के रखता है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जो अच्छे काम करे, बल्कि बोनस में क्या देगा, ज़ियादा, अपने चेहरे का दीदार कराएगा, ओ मैं तुम्हें देखूं, तुम सारी ज़िंदगी मुझे ढूंढते और पाने की कोशिश में रहे, आज तुम्हें दूंगा। फिर इसी तरह आयत 28-30, मुशरिकीन के लिए औलिया अल्लाह का कोरा जवाब, वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था, यकूल नक, अल्लाह ताला कहते हैं यौम नख्शुरहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अन्तुम व शुरकाउकुम, यानी फ़ज़य्यलना बैनहुम, वहाँ सब रिश्ते ताल्लुक ख़त्म, वो कहेंगे हमने कब कहा था कि तुम हमारी कब्रों पे आकर ये सारी रौनक मेले लगाओ। फिर 31-36, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल, जिसको आप कह सकते हैं सोल सर्चिंग क्वेश्चन, के अंदर से जमीर जाग जाए, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कौन है जो आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है, कौन है जो तुम्हारी समात और बसारत का मालिक है, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और ये सारी कायनात का निज़ाम कौन चला रहे इतना खूबसूरत। तो ये वो सवालात हैं जो आज के दौर में मुसलमानों को खुद भी करने हैं अपने आप से, और उन लोगों के सामने भी रखना है जो अल्लाह का इनकार करते हैं कि देर इज़ नो गॉड, वी आर एथियस्ट। इसके बाद आयत 37 से 41, कुरान जैसी एक ही सूरत ले आओ। तीसरी दफ़ा चैलेंज आ रहा है आपके सामने सूरह बकरा से लेके अब तक कि ले आओ, फिर अगर तुम्हें शक है इस पे तो लाओ, लेकिन तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। कुल फातु बिसूरत मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिसको मर्जी ले आओ, बल्कि एक किसी नेक से नेक और बड़े से बड़े इंसान के नबी को ले आओ, नहीं कर सकोगे। आज भी देखिए चैलेंज मौजूद है, कोई इससे प्यारा निज़ाम ज़िंदगी ला कर तो दिखाए। 42 से 45, सरदाराने कुरैश का मकरो फरेब था, सरदाराने कुरैश का मकरो फरेब था, कान लगा के बात तो सुनते थे लेकिन जाके फिर बदल देते थे, और अमल तो करना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी। 46 से 47 में रसूल की आमद कौम के लिए नाजुक मरहला होती है, ये भी जुमला नोट करने का है। आप देखिए कि जब अल्लाह नेमत दे दे और लोग ना माने ना, तो फिर पकड़ बड़ी सख्त होती है। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल पूछेगा कि बताओ अलम यातिकुम नज़ीर, आया था कोई तुम्हारे पास डराने वाला। 48 से 52 पे देखिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार आजजी है कि देखो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन तुम सुनते ही नहीं। क्या बात कि कुल लामलिकुल नफ्सी दरम वला नफन इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह ना चाहे तो मैं भी अपने लिए ज़रर और नफ़े का कोई इख्तियार नहीं रखता। 53 से 55 को देख लीजिए तो रब की कसम क़यामत आएगी, व यस्तंबियूनक अहक्कुन हुआ कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक्क व मा अंतुम बिमुजिज़ीन, कसम है तेरे रब की क़यामत आएगी। आज भी दिल में शक आए ना कभी तो याद पढ़ा करें, इतना खूबसूरत अंदाज है भाई, आएगी क़यामत, क्यों लोगों की बातों में आकर कहते हो कि कोई क़यामत नहीं। 56 से 58 इंसानों के लिए सबसे बड़ी नेमत कुरआन हकीम, सबसे बड़ी नेमत। ये थीम आयत है नूरुल कुरान की कि या अय्युहन नासु कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउ लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह हमें इस किताब की नेमत की कदर की तौफीक दे। और फिर 59 से 60, हलाल व हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है, कोई वली को पैगंबर भी ये काम नहीं कर सकता। और आयत 61, तिलावत कुरान अल्लाह का महबूब अमल है। वमा तत्लु मिन्हु मिन कुरान वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन, यानी अच्छी आवाज़ को तो अल्लाह ताला भी सुनते हैं। और 62 से 65, अल्लाह के दोस्त कौन है, सही औलिया कराम कौन होते हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, वो आपको इस हिस्से में दिखेंगी। और आयत 66 67, शिर्क की बुनियाद यकीन नहीं गुमान है, यानी कोई इसके पीछे साउंड फॉर्मेशन ही नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, ये सिर्फ ऊपर की ऊपर बनाई हुई एक इमारत है, पहली हवा जो चलेगी ना तौहीद की तो ये शिर्क की इमारत गिर जाएगी। यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना, तो शिर्क की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, ये बेबुनियाद चीज़ है। 68 से 70, अल्लाह को औलाद की कोई ज़रूरत नहीं, तुम रखो औलादों को, तुमने बूढ़े भी होना है और बीमार भी होना है, अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं। हुवल गनी लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, तो खामखा अल्लाह के बेटे बेटियां बनाकर अपने आप को अल्लाह की नजरों में मबगूस ना बनाओ। 71 से 73, हजरत नूह का पुरसोस वास है, जब कौम को देखते हैं कि बेइत्नाई करती है तो कहते हैं या कौमी इनकाना कबूर अलैकुम मकामी व तस्गीरी भी आयतिल्ला, तुम्हें मेरा अपने बीच में रहना ये नसीहत करना बड़ा ही बुरा लगता है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते मुझे, तुम कहते हो इनको निकालो मस्जिद में बिठाओ, ये बाजार में क्यों आ जाते हैं, ये घरों में क्यों, ये तर्ज ज़िंदगी पे बहस क्यों करते हैं, ये हमें माली मामलात में क्यों नसीहतें करते हैं। याद रखिए जिनको अमल नहीं करना होता उनको आज के दाई की भी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और 74, अल्लाह ताला सरकशों के दिलों पर मोहर लगा देता है, फिर तौफीक ही छीन लेता है अल्लाह ताला, कज़ालिक नतबउ अला क़ुलूबिल मोतदीन। फिर 75 से 82, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आले फ़िरौन की कशमकश, तवील किस्सा जो कई जगह कुरान पाक में आता है, यहाँ भी कदरे वजाहत से है। और 83 से 86, हक कबूल करने में सबकत नौजवान करते हैं, यूथ का टैलेंट है। फ़मा मन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, आज की यूथ को भी ज़रा सा इल्म का पानी दीजिए, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। अपनी जवान नस्लों को मत छोड़िए गैजेट्स के सहारे पे और नेट के ज़िमन पे, आप साथ बिठाकर उनको भी अच्छी बातें सुनाइए दिखाइए, बताइए, बात कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, तो देखिएगा कि आपकी नस्लें इंशाल्लाह आपके लिए निजात बनेंगी, निजात का जरिया बनेंगी। आयत 87 हज़रत मूसा का किबला भी खाना काबा था, और 88 से 89 हज़रत मूसा की आले फ़िरौन के ख़िलाफ़ बददुआ, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वश्तुद अला कुलूबिहिम। जब वक्त गुजर जाता है, लोग नहीं समझते, जब तिलों में तेल नहीं रहता, तो अल्लाह नबी को हिजरत का हुक्म देने से पहले कौम को छोड़ने का हुक्म देते हैं, यही है वो चीज़। फिर 90 से 92 फ़िरौन का इबरतनाक अंजाम, मरते वक्त कह रहे, हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ु क़ाला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल। आज भूल गया क्या ना रब्बुकुम आला। अब तो रब्बे मूसा और हारून की बातें करता है, तो गरगरा शुरू हुआ तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद। आयत 93, बनी इसराइल की न शुक्रिया, अल्लाह ने उनको क्या कुछ दिया, बव्वा न बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने तो उनको इतना कुछ दिया, लेकिन वो ना शुक्रिया करके तो फिर गुलामियों में चले गए। 94 से 97, बनी इसराइल की राह पर मत चलो, और 98 आयत में तौबा से अजाब टल जाता है, कौम यूनुस इसकी मिसाल है, बड़ा यूनिक वाक्या था इसलिए उनका तذکرہ भी यहाँ फरमा दिया गया। 99 से 100, ईमान अल्लाह की तौफीक से मिलता है, और 103, 101 से 103, ईमान अल्लाह ताला की आयात पर गौर व फिक्र से हासिल होता है, और आयत 104 से 106, हक और बातिल में समझौता नहीं हो सकता, लकुम दीनकुम वलीयद्दीन, यानी दो कौमी नज़रिया, उसकी बुनियाद मक्का मदीना से चलते चलते आज तक पूरी दुनिया में उसकी मिसालें मौजूद हैं। कुफर और इस्लाम एक साथ नहीं रह सकते। और आयत 107, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के सामने आजजी का बयान है। कुरान का दो टोक ऐलान है आयत 108 से 109 में। तो क्या पता चला कि सूरत यूनस खजाने रखती है अपने अंदर। हमने ले ली अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक। अब चंद चीज़ें अहम आयात में से हिदायत की सूरत में पिक कीजिएगा, और सिर्फ अगर आयतों के नंबर ही ले सके ना, तो उसके बाद फिर उनको लेकर आगे जाकर अपने लिए खैर के रास्ते अपने लिए खोल सकते हैं आप और मैं भी। तो आयत है 7 और 8, अहले जहन्नुम कौन है, यानी वो कौन लोग हैं जो जहन्नुम में जाएंगे और जिनके लिए जहन्नुम के ये सारे रास्ते हैं। तो पहली बात है, जिनको अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं होती और अल्लाह की आयतों से गफलत है, अपने आप को भी साथ साथ चेक करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहीं हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाएं। फिर आयत 12, इंसान की नाशुक्री, क्या है कि जब दुख आता है, तकलीफ़ आती है, तो अल्लाह के दर का हो जाता है, और जब तकलीफ़ टलती है तो ऐसा हो जाता है जैसा कि कभी अल्लाह को पुकारा नहीं था। ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, छिछोरपना है, थोड़दिलापन है। इसके ऊपर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए मदद मांगिए कि अल्लाह हमारे अंदर से ऐसी चीज़ें निकाल दे। फिर आयत नंबर 24, दुनिया की हकीकत, इसके ऊपर आप वो लेक्चर सुनिए अपने लिए, इंशाल्लाह रमज़ान के लिंक पर आपके लिए डलवा दिया जाएगा और आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो, बहुत सॉफ्ट सा लेक्चर है, ख़ास तौर पे बिल्कुल नए लोगों को सुनवाने वाला, दिल पज़ीरी का अंदाज़, और चीज़ जब दिल में आ जाती है तो फिर उसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। अगली आयत देखिए, जो हिदायत है आपके मेरे सामने, आयत 31 में अल्लाह ताला की कुदरतों का बयान है कि कैसे आसमान ज़मीन से रिस्क देता है, तुम्हारी समात और बसारत का वो बेहतरीन मालिक है, लेकिन तुम उसको छोड़कर अपने आप को बड़ा बनाते हो, किधर जाते हो, क्या करते हो। तो इंशाल्लाह जब आप ये लेंस लगा लेंगे ना कुरान सुन्नत का, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में खैर और आफ़ियत आएगी, और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, और इतना खामोशी से ये चेंज आता है कि उसके बाद इंसान को महसूस ही नहीं होता और वो बदल चुका होता है। और आयत 57 से 58, अज़मते कुराने करीम, या यूहन्नास, इस पे भी एक लेक्चर है। अब आपके उस टाइम चूँकि नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड ही करती हूँ, कभी मौका मिले तो सुनिए, कुरान मेरे दिल की बहार। बहुत ज़्यादा दिलों पर इस कुरान ने दस्तक दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दरवाजे खोले और आज बाकायदा स्टूडेंट्स बन चुके हैं। आयत 62 से 64, औलिया अल्लाह कौन होते हैं, इसमें आपको वो खूबसूरत चेकलिस्ट मिलती है कि आज के दौर के वली अल्लाह कौन है। वाकई जो 5 वक्त की नमाज़ मस्जिद में पढ़े, आज तो वही वलीउल्लाह, आज तो हराम के सिवा कोई हलाल कमा के बच्चों को पाल ले वही वलीउल्लाह है। तो विलायत का ताल्लुक तकवा के साथ है, शोबदों और मौजों के साथ नहीं। और आयत 90 से 92, गर्क फिरौन, کیسے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوا، لیکن کہا گیا آلانا وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین، تو کیا پتہ چلا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اس کے بعد چند آیتیں سورۃ ہود کی بھی ہیں اس بارے میں. اس کا اگر ایک رفلی دیکھیں تو صرف شروع کی بات ہی بتا کے آگے چلو، کیونکہ پھر ہم کل کے بارے میں اس کو دیکھیں گے، صرف آپ کو دکھا کے آگے گزر جاتے ہیں. پہلی 24 آیتیں اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکریوں سے متعلق ہیں، اسی میں سے تقریباً 5 آیتیں اس بارے میں ہیں. دیکھیے گا آیت نمبر 1، آیات قرآنی کا اسلوب، فصلت من لدن حکیم خبیر، پہلے حکمت ہے پھر فصلت ہے، کبھی حکمی آیتیں ہوتی ہیں کبھی تفصیلی ہوتی ہیں. پھر 2 سے 4 قرآن حکیم کی دعوت کیا ہے، یعنی جو مطلوب ہے تم سے وہ کیا ہے، ان استغفروا ربکم، اور اس کے آگے اپنے اعمال کی اصلاح. اور آیت نمبر 5، قرآن کی دعوت اور مشرکین کا رد عمل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنکھیں کھول دے، حدیث سنتے جائیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں. ترمذی کی روایت. آج ہم بھی اسی پہ اپنے سیشن کو کلوز کریں گے کہ اللہ جو دعائیں ہم نے ان آخری چند منٹوں میں مانگنی تھی اس کی جگہ ہم نے قرآن کو چند منٹ دے دیے، تو اس کو قبول فرما اور ہمیں بن مانگے عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.